थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू, मेरा हर गीत है तू, मेरे प्यारे मसीहा, मेरा मनमीत है तू, मेरा संगीत है तू।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा है अब्राहम, इसहाक, याकूब, यहां तक कि यहोशू के विश्वास को। और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि यहोशू एक आदर्श है। मेरे प्रियो, हम विश्वास के बारे में देख रहे थे और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए राहाब के विश्वास को भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमें से प्रत्येक के जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। यद्यपि कि हम एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु हम आपके वचन को रेडियो के माध्यम से एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय जितने भी श्रोता भाई बहन रेडियो के सामने आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि प्रत्येक जब आपके वचन को सुने तो समझ सके, अपने जीवन में ग्रहण करने पाए और आपको धन्य कह सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय निराश हैं, बीमार हैं, मानसिक तनाव और दबाव में हैं, पारिवारिक समस्याओं में हैं। पिताजी, आप उन पर कृपा दृष्टि करें, उन्हें उनके रोगों से छुटकारा दे, उन्हें अपनी शांति दे और आज अपने वचन के द्वारा उनसे भी बातचीत कर। जो पाप में डूबे हैं, प्रभु आज के दिन आप पर वे अपने विश्वास को ला सकें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम आते हैं इब्रानियों की पत्री और उसमें हम देखते हैं राहाब वेश्या ने विश्वास किया और यरीहो के विनाश के समय वह सुरक्षित रखी गई थी। यरीहो एक नगर है। यरीहो में जब समाचार पहुंचा कि बाढ़ग्रस्त यर्दन पार करके इसराइली वहां आ गए हैं तो उनका साहस जाता रहा। वे यह तो जानते थे कि उन्होंने लाल सागर पार किया है, परंतु बाढ़ग्रस्त यर्दन पार करना आश्चर्यजनक था। वहां पर कोई भी पुल नहीं था और उन्होंने बाढ़ से उफनती यर्दन पार की थी। यह एक आश्चर्यजनक घटना थी। वे सोच रहे थे कि बाढ़ उतरने तक उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास रणनीति तैयार करने के लिए पर्याप्त समय है। मेरे मित्रों, यहोशू ने यरीहो में भेदिये भेजे जिनका संपर्क राहाब से हुआ जो एक वेश्या थी। मुझे ऐसा लगता है कि राहाब ने उनसे सौदा करना चाहा होगा, परंतु उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने यरीहो उनके हाथ में कर दिया है और वे किसी विशेष उद्देश्य के निमित्त यहां पर आए हैं, परंतु उन्हें इस समय सुरक्षा की आवश्यकता है। उसने उन्हें अपने घर की छत पर छिपा दिया जो एक जोखिम भरा काम था, इसमें उनकी जान भी जा सकती थी। अंत में उनके प्रस्थान करते समय उसने उनसे अपनी जान की भीख मांगी तो उन्होंने कहा कि वह अपने घर की खिड़की से एक लाल रस्सी लटका दे और यहोशू उसे सुरक्षित छोड़ देगा। यहोशू की पुस्तक में राहाब की गवाही दी गई है। यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय उसके 9-11 पद में लिखा है, मुझे निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल सागर का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। मेरे मित्रों, उस स्त्री का यह अंगीकार बड़ा ही विचित्र है, परंतु यह उस तथ्य का प्रकाशन है कि परमेश्वर ने यरीहो नगर को निरुद्देश्य नष्ट नहीं किया था। वे 40 वर्षों से सुन रहे थे कि इसराइल ने लाल सागर चमत्कारी रूप से पार किया है। अनेकों ने इस समाचार पर विश्वास तो किया, परंतु परमेश्वर में विश्वास नहीं किया। उन्होंने यह समाचार भी सुना कि इसराइल के परमेश्वर ने उन्हें एमोरियों पर कैसे विजय दिलाई। इस समाचार से यरीहो वासी लाभ उठा सकते थे। अब वे यर्दन पार करके यरीहो के नगर द्वार पर डेरा डाले हुए थे। परमेश्वर क्या कर रहा था? परमेश्वर यरीहो वासियों को उसमें विश्वास करने का, भरोसा करने का और उसकी ओर फिरने का अवसर दे रहा था। मेरे मित्रों, कई बार परमेश्वर मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबके जीवन में अवसर देता है घटनाओं और परिस्थितियों को ला करके, ताकि हम उसकी ओर फिरें और उस पर विश्वास करें। यहां पर मेरे विचार में, यदि परमेश्वर राहाब वेश्या को उस नगर में बचा सकता था तो वहां के शासक एवं अन्य जनता को भी क्यों नहीं बचा सकता, यदि वे भी राहाब की तरह उसमें विश्वास करते। परमेश्वर उन सबको एक ही निगाह से देखता है कि वे सब पापी हैं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कुछ लोग गुप्त में पाप करते हैं और कुछ लोग खुले में पाप करते हैं। जो भी हो, परमेश्वर ने उन्हें मन फिराव का पूरा पूरा समय दिया। उनके पास 40 वर्ष थे कि वे परमेश्वर की ओर फिरें, परंतु वे नहीं फिरे, और यही कारण हुआ कि यरीहो शहर को गिराना पड़ा। मेरे मित्रों, मैं आलोचकों से पूछना चाहता हूं कि 40 वर्ष के समय में एक ही स्त्री ने परमेश्वर में विश्वास किया, क्या कारण था? यदि कोई 40 वर्ष में परमेश्वर पर विश्वास ना करे तो वह कभी विश्वास नहीं करेगा। परमेश्वर धीरजवंत है, वह सहनशील है, वह नहीं चाहता कि एक भी प्राणी अर्थात मनुष्य नष्ट हो। परमेश्वर विश्वास करने वाली वेश्या को भी बचाता है। यरीहो वासियों ने जो सुना उस पर तो विश्वास किया, परंतु परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। यदि वे परमेश्वर पर विश्वास करते तो नष्ट नहीं होते। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप में से कोई ऐसे हैं जो पाप में जीवन जी रहे हैं और सोचते हैं कि कोई भी नहीं जानता है, तो आप गलत हैं। परमेश्वर जानता है और आपके लिए भी आज अवसर है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें, तो वह आपको भी राहाब वेश्या की तरह बचा सकता है, आपको एक नया जीवन, नया आनंद दे सकता है। इस स्त्री ने जब परमेश्वर में विश्वास का प्रमाण दिया और कहा कि जब वे यरीहो को जीतें तो उसकी सुधि लें, तो वह उसके विश्वास का कदम था और इसमें उसने जान की जोखिम उठाई। उसका विश्वास कार्यकारी हुआ। विश्वास निठल्ला नहीं बैठता है। भेदियों को ग्रहण करने के कारण वह अन्यों के साथ नष्ट नहीं की गई। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हमने सुना है कि परमेश्वर ने तुम्हारे द्वारा क्या क्या किया है और हम विश्वास भी करते हैं। मैं उस पर यहां तक विश्वास करती हूं कि अपनी जान की जोखिम उठा सकती हूं। उसने अपने विश्वास का प्रमाण दिया। मेरे प्रियो, हम राहाब में विश्वास का चमत्कार देखते हैं। हम देखते हैं कि इस पतित संसार में परमेश्वर मनुष्यों के एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अधिक अच्छा नहीं समझता है। परमेश्वर की दृष्टि में हम सब पापी हैं और जो भी उसकी ओर फिरता है वह उद्धार पाता है। परमेश्वर कैसा महान है, क्योंकि वह पक्षपात नहीं करता और चाहता है कि हर एक इंसान, हर एक मनुष्य बचाया जाए। तो आइए अब हम देखते हैं अन्यों का विश्वास। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसके 32 पद में लिखा है, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन का और यिप्तह का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूं। मेरे मित्रों, लेखक पुराने नियम के इतिहास में उस स्थान पर आ गया है कि वह लिखता है, अब और क्या कहूं। वह किसी भी दिशा में जा सकता था और विश्वास के नायकों की सूची बना सकता है। वह दिखा सकता था कि विश्वास कैसे अनेक स्त्री और पुरुषों में कार्य करता है। अतः वह हमें एक सूची देकर साफ साफ कह देता है कि वह विस्तार पूर्वक इनकी चर्चा नहीं कर पाएगा, परंतु इन सबों को इस अध्याय में रखना आवश्यक है। हम इन स्त्री पुरुषों के जीवन में विश्वास का संघर्ष देखते हैं। उनके विषय विस्तार से चर्चा तो नहीं की गई है, परंतु उन सब में कुछ तो सामान्य है। ये सब शासक हैं, गिदोन, बाराक, शिमशोन, इप्ता और शामुएल सब न्यायी थे, दाऊद राजा था। ये सब परमेश्वर की ओर से युद्ध कर चुके थे और विश्वास ही से उन्होंने युद्ध जीते। मेरे मित्रों, इनमें से मैं केवल गिदोन का उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आज लोग अपने कलीसिया को गिदोन का दल कहते हैं, अर्थात वे संख्या में कम हैं, परंतु मेरे प्रियो, गिदोन के दल में मुख्य बात उनकी संख्या की कमी नहीं थी, उनकी विशेषता थी उनका विश्वास। गिदोन वास्तव में अल्प विश्वासी था और जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तब उसमें विश्वास बहुत ही कम था। गिदोन उस समय न्यायी बना जब मिद्यानियों ने इसराइल पर अधिकार कर लिया था। इब्रानी अपनी फसल भी नहीं काट पा रहे थे, मिद्यानी उन्हें लूट लेते थे। गिदोन एक जवान ही था और छिपकर गेहूं की दावनी कर रहा था। गेहूं की दावनी के लिए उसे पहाड़ के ऊपर जहां हवा अधिक हो हवा में उछालकर भूसी को उड़ाया जाता था, परंतु गिदोन कायर था, डरपोक था, इसलिए वह घाटी में छिपकर गेहूं साफ कर रहा था कि उसे कोई देख न ले। यदि आप निराशा से भरा कोई काम देखना चाहें तो उस समय गिदोन को देखें। वहां तो गेहूं की भूसी उड़ाने के लिए हवा भी नहीं थी। भूसी तो उड़ने की जगह उसी के सिर पर गिर रही थी। इससे अधिक निराशाजनक काम और क्या हो सकता है? तो क्या गिदोन ऐसा ही था? इसी समय स्वर्गदूत वहां पर प्रकट हुआ और उससे कहा, न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय उसके 12 पद में, हे शूरवीर सुरमा। गिदोन के संबोधन में ये शब्द उचित नहीं थे। उसने शायद सोचा भी नहीं होगा कि स्वर्गदूत उसे संबोधित कर रहा था। अतः मेरे विचार में उसने चौंक कर स्वर्गदूत से पूछा होगा, कौन मैं? आप किससे बात कर रहे हैं? उसने स्वीकार भी किया कि वह कायर है, क्योंकि उसने कहा, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, छोटा है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं, अर्थात मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उससे कहा, क्योंकि तू कुछ भी नहीं है इसलिए मैंने तुझे चुना है, मैं चाहता हूं कि तू मुझ पर विश्वास करे। हम देखेंगे कि परमेश्वर उसके विश्वास को बल दे रहा था, जब तक कि वह दिन ना आया जब उसने केवल 300 लोगों को लेकर मिद्यानियों को हराया। गिदोन के जीवन में विश्वास क्रियाशील था। मेरे मित्रों, कितने विश्वासी सोचते हैं कि प्रभु की सेवा में बड़ा प्रदर्शन ना हो तो वह सेवा नहीं मानी जाएगी। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि परमेश्वर इस रीति से काम नहीं करता है? मेरे विचार में तो परमेश्वर की सच्ची सेवा छोटे छोटे लोगों और समूहों द्वारा ही की जा रही है। मैं गिडियन मिशन के साथ ऐसे सेवक को जानता हूं जो एक सच्चा गवाह और कर्मठ सेवक है। परंतु कोई उसे नहीं जानता है। ऐसे ही एक इब्रानी विश्वासी है और अनेक गिडियन कार्यकर्ता हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता है। वे विश्वास में सेवा करते हैं। यदि कोई परमेश्वर में विश्वास रखे तो परमेश्वर कुछ नहीं को कुछ भी बना देता है और कुछ नहीं को भी काम में लेता है। परमेश्वर चमत्कार करने के लिए रहस्यमय रूप से काम करता है। इब्रानियों की पत्री का लेखक गिदोन, बाराक और शिमसोन का नाम लेता है। मैं नहीं जानता कि मैं होता तो शिमसोन को उनकी सूची में रखता या नहीं। शिमसोन तो एक सर्वथा विफल मनुष्य था, परंतु वह परमेश्वर में विश्वास करता था। उस पर परमेश्वर का आत्मा उतरता था और वह इस्राएल को मुक्ति दिलाने का काम कर रहा था, परंतु काम पूरा नहीं कर पाया। लेखक इप्ताह और दाऊद का नाम भी लेता है। दाऊद के बारे में तो हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। वह शामुएल और भविष्यद्वक्ताओं का नाम भी लेता है, परंतु कहता है कि उसके पास समय नहीं है कि सबका नाम ले। अब देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने विश्वास रखकर युद्ध किया। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसके 33 पद में लिखा हुआ है, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए। यहां पर लिखा है सिंहों के मुंह बंद किए। यह दानियल नबी के विषय में है, जबकि उसका नाम यहां पर नहीं लिया गया है। तब हम आगे पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसके 34 पद में, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। यह विश्वास भरा युद्ध था और वे विजयी हुए। अब हम देखेंगे कि विश्वास जीवन के हर एक पक्ष में व्याप्त है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 35 पद में हम पढ़ते हैं, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। आपको पहले राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 17 से 24 पद का वृतांत स्मरण होगा। एलियाह ने सारपत नगर की विधवा के मृतक पुत्र को जिलाया था। लिखा है कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा। यहां पर वह शहीदों के विषय में चर्चा नहीं कर रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, यहां पर हम देख रहे हैं कि इब्रानियों की पत्री का लेखक प्रत्येक के विश्वास के योद्धाओं को हमारे सामने रख रहा है। आज क्या ही धन्य हम लोग हैं जो उनके जीवन की गवाहियों को, विश्वास को देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो पाप में जीवन जी रहा है वह उस पर विश्वास करे और विश्वास के द्वारा वह बचाया जाएगा, वह उद्धार को प्राप्त करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु जो इस पृथ्वी पर आया उसने हमारे पापों के लिए कोड़ों की मार सही, और इतना ही नहीं वह हमारे पापों के बदले में वह क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि उसके पवित्र लहू बहाए जाने के द्वारा हम उस उद्धार को प्राप्त कर सकें, मुक्ति को प्राप्त कर सकें। जी हाँ, वचन में लिखा है कि बिना लहू बहाए उद्धार नहीं है, और यह लहू सिर्फ प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा ही हमें छुटकारा दे सकता है। मेरे मित्रों, यदि आज आप उस पर विश्वास करें तो निश्चय जाने कि वह आपको उद्धार दे सकता है, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है। इस पृथ्वी पर बहुत से लोग आए, उन्होंने ज्ञान और धर्म की बातों को हमें बताया, लेकिन कोई भी हमारे लिए नहीं मरा। सब मर गए और चले गए, परंतु प्रभु यीशु मरा और फिर मृतकों में से जी उठा। आज भी वह जीवित है और यही कारण है कि वह हमारे लिए उद्धार का कार्य कर सकता है। मेरे मित्रों, क्या आज आप उस प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं जो आपको आपके पापों से छुटकारा देना चाहता है, शांति देना चाहता है? और यही कारण है कि वह मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसके 28 पद में कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ, वह आपको शांति और विश्राम देना चाहता है, लेकिन आपको उसके पास आने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, परंतु मैं आशा करता हूँ कि आप एक सही निर्णय अपने जीवन में लेंगे और निश्चय ही उन महान आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 22600001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।